ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 19 श्लोक संख्या 15। अध्याय का शीर्षक है जम्बुद्वीप का वर्णन। तन्न प्रभुत्वं कुकले वरापिता त्वन्माययाहं ममतामधोक्षज भिन्द्यामयेनाशु वयं सुदर्भिदां विदेहि योगं त्वयि नः स्वभावमिति। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जाए। अतः हे प्रभु, हे अधोक्षज, कृपा करके हमें भक्ति योग साधना की शक्ति प्रदान करें, जिससे हम अपने अस्थिर मन को वश में करके आप में लगा सकें। हम सभी आपकी माया से प्रभावित हैं, अतः हम मल मूत्र से पूरे शरीर तथा इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु के प्रति अत्यधिक समर्पित है। इस आसक्ति को त्यागने का एकमात्र उपाय भक्ति है, अतः आप हमें ये वर दें। तात्पर्य, भगवत गीता में श्री कृष्ण का उपदेश है, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। सदैव श्री कृष्ण का चिंतन, भक्ति में व्यस्तता, सदैव श्री कृष्ण की पूजा और उनको नमस्कार करना, ये पूर्ण योग क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इस योग क्रिया को किए बिना इस मल मूत्र पूरे शरीर के प्रति मोह को त्याग पाना दुष्कर है। योग की सिद्धि इसी में है कि देह के प्रति जो भी मोह है, उसे श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति में परिणित कर दिया जाए। हम सांसारिक सुख में अत्यधिक लिप्त रहना चाहते हैं, किंतु जब हम श्री कृष्ण के प्रति वैसी आसक्ति रखते हैं, तो हमारे उद्धार का मार्ग प्रशस्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि इसी योग प्रक्रिया का पालन करे। जम्बुद्वीप का वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। और यहां पर प्रार्थना की जा रही है, वो प्रार्थना है जो महाजनों के द्वारा की गई, नारद जी जैसे महान भक्तों के द्वारा की गई प्रार्थना है। और इस प्रार्थना के द्वारा देहात्मक बुद्धि को समाप्त करके भगवत सेवा में तत्परता में लगे रहने के लिए ये प्रार्थना की जा रही है। श्री चैतन्य चरितामृत में दिया गया है एक प्यार, जिसमें मध्य लीला में आता है 19वें अध्याय में, प्यार संख्या 193। गोकुले केवल रति ऐश्वर्य ज्ञान हीना, पुरी द्वै वैकुंठाद्य ऐश्वर्य प्रवीण। यानी कि पूर्ण आसक्ति दिखाई पड़ती है गोकुल वृंदावन में, और ऐश्वर्य ज्ञान से पूर्ण, ऐश्वर्य प्रवीण, ऐश्वर्य ज्ञान से पूर्ण आसक्ति पाई जाती है कहां पर? दो शहरों में, मथुरा में और द्वारका में, और फिर बैकुंठ में। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान के धाम में भी आसक्ति है। एक तो ऐश्वर्य पूर्ण है और दूसरा क्या है? ऐश्वर्य विहीन है। केवल रति, केवल भक्ति सदमा, हम लोग प्रत्येक दिन गाते हैं गुरु वंदना में, केवल भक्ति सदमा। तो केवल का मतलब ओनली नहीं है, केवल वहां पे केवल का मतलब ऐश्वर्यहीन, शुद्ध भक्ति, यानी कि वो भक्ति जो ब्रज के भक्त करते हैं, ब्रजवासियों के द्वारा जो की जाती है, जिनमें भगवत ज्ञान का भी प्रभाव नहीं रहता है। भगवत ज्ञान यानी कि कृष्ण परम भगवान है, इस बात का भी ज्ञान नहीं रहता है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्तिरोत्तमा। तो ये उत्तमा भक्ति वास्तव में देखा जाए तो ये ब्रज के भक्तों के द्वारा की जाती है। ये श्री रूप गोस्वामी जो श्लोक लिख रहे हैं वास्तव में पूर्ण ब्रज के भक्तों के बारे में बता रहे हैं जिनमें दिव्य ज्ञान का मिश्रण भी नहीं है। श्रील प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के एक तात्पर्य में बता रहे हैं, जड़ विद्या से ऊपर ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म विद्या से ऊपर दिव्य ज्ञान है और दिव्य ज्ञान से ऊपर भक्ति है। तो दिव्य ज्ञान हालांकि भक्ति का एक भाग ही है, लेकिन फिर भी दिव्य ज्ञान से ऊपर भक्ति क्यों बताया है? क्योंकि किसकी भक्ति? ब्रज की भक्ति। इसलिए उद्धव जी के संदेश को भी स्वीकार नहीं किया गोपियों ने। ऐश्वर्य विहीन है उनकी भक्ति, निष्कलंक है। तो इस प्रकार की रति, इस प्रकार की आसक्ति देखी जाती है ब्रज के भक्तों में। ममत्व की भावना कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्णा इज माइन। एक तो होता है कि मैं कृष्ण का हूं। कौन बोलती है? चंद्रावली बोलती है या रुक्मिणी जी बोलती है, मैं कृष्ण की हूं। लेकिन राधारानी क्या बोलते हैं? कृष्ण मेरे हैं। तो ब्रज में भी, ब्रज के भाव में भी जो श्रीमती राधारानी का जो भाव है सर्वोत्तम माना गया है, कि उनकी उनका जो ममत्व है वो सबसे सर्वोदिक है, सर्वोपरि है। इसलिए श्रीमती राधारानी का भाव क्या है? भक्ति रसाम सिंधु में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण मेरे हैं। यह आसक्ति देखी जाती है ब्रज के भक्तों में। आसक्ति का जो स्तर है उसमें पहुंचने में कई जन्म लग जाते हैं आसक्ति के स्तर पर पहुंचने में, क्योंकि सबसे पहले तो निष्ठा के स्तर पर पहुंचना पड़ता है और उसके बाद फिर लोभ जागृत होता है या रुचि जागृत होती है और फिर हम राग मार्ग की साधना प्रारंभ करते हैं और फिर वो रुचि जब परिपक्व हो जाती है तो आसक्ति में फिर परिणत हो जाती है। आसक्ति श्रील विश्वनाथ की ठाकुर माधुर्य कादंबनी में बता रहे हैं आसक्ति के स्तर पर क्या होता है कि अगर भौतिक चर्चा कर भी रहे हैं तो वो भक्त को पता ही नहीं चलता है कि कब वो भगवत चर्चाओं से शुरू की, यानी कि स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण का गुणगान करना शुरू कर देता है। ये आसक्ति का लक्षण। भौतिक चर्चा वैसे तो करेगा नहीं ऐसा भक्त सबसे पहले, लेकिन मान लीजिए वो कर भी रहा है तो भौतिक चर्चा करते करते वो कृष्ण के बारे में गुणगान करना शुरू कर देगा। आसक्ति स्तद गुणाख्याने, श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं भाव भक्ति के जो 9 लक्षण है उसमें एक लक्षण है आसक्ति स्तद गुणाख्याने, यानी कि गुणों का आख्यान करने में आसक्ति होती है। इसके गुण कृष्ण के गुण, ये आसक्ति होती है। आसक्ति क्योंकि इस प्रकार की होती है तो इस कारण से क्या होता है, भौतिक अगर चर्चा होती भी है मान लीजिए तो वो स्वाभाविक रूप से जो है फिर कृष्ण के गुणगान में लग जाता। रुचि के स्तर में, निष्ठा के स्तर पर, क्षमा करिए, निष्ठा के स्तर पर ये नहीं देखा जाता। निष्ठा के स्तर पर क्या होता है कि स्थिरता तो रहती है कृष्ण के गुणगान में, श्रवण कीर्तन इत्यादि में, लेकिन कब भौतिक चर्चा में चले गए ये पता नहीं चल पाता। तो निष्ठा के स्तर और निष्ठा के स्तर से नीचे जितने भी भक्ति की सीढ़ियां हैं, सोपान हैं, उन सब में यही देखा जाता है कि कृष्ण कथा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय के बाद भौतिक चर्चा में लग गए। लेकिन आसक्ति में ऐसा नहीं होता है। आसक्ति में कृष्ण से, उनके नाम से, उनके रूप से, उनके गुणों से, उनकी लीलाओं से इतनी आसक्ति होती है कि कोई भी चर्चा क्यों ना कर रहा हो वो स्वाभाविक रूप से जो है वो फिर कृष्ण का गुणगान करना शुरू कर देता है सब, या कृष्ण का चिंतन करना शुरू कर देता है स्वाभाविक रूप से। तो आसक्ति के स्तर पर जो है वो भी इस बात को परख नहीं पाता है कि कब मैं भौतिक चर्चा कर रहा था और कब मैं गुणगान करने लग गया कृष्ण का, स्वाभाविक रूप से वो प्रवेश कर जाता है उसका मन। आसक्ति स्तर पर इसलिए जो भक्ति वो स्वाभाविक हो जाती है, इसलिए वहां पर भगवान की लीलाओं का चिंतन करना, उनका स्मरण करना स्वाभाविक हो जाता, उसके लिए बल नहीं लगाना पड़ता, उसके लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए वहां पर राग मार्ग की साधना जो है बहुत स्वाभाविक होती है। इसलिए ऐसे आसक्ति के स्तर पर विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं कि अपने स्वरूप का, अपने सिद्ध देह का जो है आभास हो जाता है, स्वरूप के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। यानी कि यह आसक्ति जो हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कराती है, वही आसक्ति जो है हमें भौतिक जगत में प्रवेश कराती है। भौतिक जगत से आसक्ति होने के कारण पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम, कौन सा भाव? ब्रज का भाव नहीं, भागवत कह रहा है कौन सा भाव? पुंसाम स्त्रिया मिथुनी भावम एतम हृदय ग्रंथि माहु तयोर हृदय ग्रंथि माहु, यानी कि हृदय में ग्रंथि बन जाती है पुरुष की स्त्री से, स्त्री से पुरुष की। आसक्ति ये हृदय की ग्रंथि है और इस ग्रंथि के कारण जो है संसार शुरू होता है, सृष्टि की शुरुआत जो है इसी आकर्षण से शुरू होती है। प्रजापति जिनको नियुक्त किया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना के लिए, तो प्रजापति क्या करते हैं? वो सृष्टि में जनसंख्या बढ़ाते हैं, उनका कार्य यही, भले वो प्रजापति दक्ष हो या कोई भी हो प्रजापति, या स्वयं ब्रह्मा जी भी अपने आप में एक प्रजापति हैं। तो इनका कार्य यही है कि सृष्टि में जनसंख्या को बढ़ाना। जनसंख्या को बढ़ाने का मतलब है आसक्ति को बढ़ाना, और यह आसक्ति की शुरुआत होती है जब पुरुष का स्त्री से और स्त्री का पुरुष से होता है। श्री चैतन्य चरितामृत में जब श्री चैतन्य महाप्रभु राम के लिए पहुंचे और वहां पर उन्होंने सागर मलिक दबीर खास नाम पड़ा था उनका, अमर और संतोष का, तो उनको नाम दिया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने, क्या से आपका नाम क्या है? रूप और सनातन है, ये आपका नाम है। महाप्रभु ने खुद उनको नाम दिया श्री चैतन्य महाप्रभु। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया परव्यसनी नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मशु तद एवास्वादयति अंतर नव संगम रसायनम। श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता के भूमिका में भी या भक्ति रसामृत की भूमिका में दिया हुआ ये उदाहरण दिया है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस ये शब्द कहे। क्या बोला श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि अगर कोई एक स्त्री जो है आसक्त है किसी अन्य पुरुष से पति को छोड़कर, तो देखा जाता है कि फिर वो स्त्री क्या है, पारिवारिक कार्यों में वो मग्न रहती है, एब्सॉर्ब रहती है कि पति को कहीं पता ना चल जाए। और इसी तरह से पुरुष भी है, अगर वो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी अन्य स्त्री से आसक्त है तो वो भी इसी तरह से घर के कार्य में व्यस्त रहता है बाहरी रूप से, लेकिन हृदय से क्या होता है, उस हृदय से उस स्त्री का मन जो है वो अन्य पुरुष का चिंतन करने में लगा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं उनको, इसी तरह से तुम यहां पर रहते हुए नवाब की तो सेवा कर रहे हो लेकिन मेरा चिंतन करो। तो जिस तरह से क्रमशः भक्ति का विकास होता है, भक्ति में धीरे धीरे जैसे हम बढ़ते आगे, यानी कि हमारे अंतरंग जो भावनाएं वो बढ़ती है और हृदय के अंतकरण में हम और अधिक कृष्ण भावना भावित होते जाते हैं, तो फिर बाहर की दुनिया में हम लोग केवल नाम मात्र के लिए रह जाते हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, या फिर लोग लाश को बचाए रखने के लिए या समाज में केवल रहने के मात्र के लिए रहने के लिए रहते हैं, यानी कि अनासक्त हो जाते हैं समाज से, परिवार से। ये भक्ति में आगे बढ़ने का लक्षण, और अंततः कोई भक्ति में बहुत आगे बढ़ा होता है जैसे आसक्ति के स्तर पर पहुंचता है तो फिर उस देह में भी जो है वो केवल औपचारिकता के लिए रह रहा है, उसका उद्देश्य नहीं है शरीर में रहना, शरीर से कोई आसक्ति नहीं, भगवान के नाम से आसक्ति, उनके रूप से आसक्ति, उनके गुणों से आसक्ति, उनकी लीलाओं से आसक्ति। आसक्ति का मतलब है इस देह से आसक्ति नहीं है, इस देह से कोई आसक्ति नहीं, और जब देह से कोई आसक्ति नहीं है तो निद्रा आहार विहार आदि विजितो चात्यंत दीनो चाहिए। षड गोस्वामी निद्रा और आहार के पर विजय पा लेता है ऐसा भक्त, तो उसको फिर ना निद्रा की चिंता होती है ना फिर खाने की चिंता होती है। उसको किसकी चिंता होती है? चिंता कृष्ण की होती है, कृष्ण से वियोग के कारण, कृष्ण से विरह के कारण। जितना अधिक भक्त जो है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ता है उतना अधिक उसको कृष्ण से विरह होता है और संसार से क्या होता है? विरह नहीं होता है। संसार से विरह इसलिए नहीं होता है क्योंकि संसार से आसक्ति नहीं रह गई, परिवार से आसक्ति नहीं रह गई। जिससे आसक्ति होगी उसी से तो विरह होगा। जिससे आसक्ति होती है उसी से विरह होता है, जिससे आसक्ति नहीं होती है उससे विरह कैसे हो सकता है? यानी कि जितना अधिक विरह होगा उतना अधिक मिलन की संभावना हो जाती है। इसको क्या कहते हैं टेक्निकली? क्या कहते हैं? पूर्व राग, है ना, पूर्व राग कहते हैं। मिलने से पहले जो है राग, विरह हो रहा है। क्यों हो रहा विरह? कि मिलना है। तो इस प्रकार मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कहने का अर्थ है कि कोई पूछे कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम धाम जाने वाले हैं नहीं, तो ये उत्तर है इसका कि कितना विरह उत्पन्न हो रहा है, कितना विरह हो रहा है कृष्ण का नाम लेते हुए। कृष्ण से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परीक्षा ये है कि नाम के जप में कृष्ण से विरह होता है या माया से विरह। कृष्ण से विरह हो रहा है तो है शुद्ध नाम, माया से विरह हो रहा है तो भुक्ति नाम। सरल सी बात, कृष्ण से विरह हो रहा है तो वो है ध्यान पूर्वक जप करना, और माया से विरह हो रहा है तो मतलब है ध्यान भंग होना, इनअटेंटिव चैंटिंग। माया से विरह होने का मतलब है इनअटेंटिव चैंटिंग, और कृष्ण से विरह होने का मतलब है अटेंटिव चैंटिंग। तो यहां पर श्रीमद् भागवत की चर्चा हो रही है तो हम उसी स्तर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि जब तक कृष्ण से विरह नहीं होगा तो ऐसा हरिनाम उच्चारण जो है वो कभी शुद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि आसक्ति के स्तर पर नाम और नामी में कोई भेद नहीं रह जाता। यह है शुद्ध नाम का स्तर, आसक्ति। आसक्ति के स्तर पर शुद्ध नाम का उच्चारण होता है या फिर रुचि के स्तर पर शुरुआत हो जाती है, कह लीजिए। लेकिन नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, नामी का दर्शन होने लगता है आसक्ति के स्तर पर, स्वरूप का आभास होने लगता है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम, है ना, चित्त के दर्पण का जितना अधिक मार्जन होता जाएगा उतना अधिक हमारी आसक्ति भगवान से बढ़ती जाएगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आई नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम बुदो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। आई नंद तनुज, हे नंद तनुज, किंकरम, क्या करूं मैं क्या करूं, मैं असहाय अवस्था में हूं। किंकर का मतलब ये होता है कि अपने आप को बहुत निकृष्ट मानना, किंकर या किंकरी। आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुदो, मैं पतित हो गया यानी गिर गया हूं इस भवाम बुदो, इस भवसागर में गिरा हुआ मैं। कृपया तव पाद पंकज, कृपया क्या करें, अपने पाद पंकज में आप स्थित कर लीजिए मुझे। स्थित धूली, कहां स्थित करना है? स्थित धूली सदृशम विचिंतया, उस चरण के अग्रभाग में या कहीं आसपास कहीं भी, चरण की धूली जो है उसका मुझे कण ही बना लीजिए। ये आसक्ति का लक्षण है, भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं भजन रहस्य में। तो भक्तिनाथ ठाकुर बता रहे हैं कि ये आसक्ति का लक्षण है कि इस प्रकार से प्रार्थना करने लगता है, और ये प्रार्थना आसक्ति तभी होती है जब रुचि होगी। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अयुतकी तो जन्म जन्मांतर तक केवल अयुतकी भक्ति चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, तभी तो आसक्ति जागृत होगी। इसलिए रुचि की परिपक्व अवस्था जब हो जाती है तो आसक्ति का आभास होने लगता है। ये जितनी भी भक्ति की सीढ़ियां हैं, श्रद्धा से लेकर प्रेम तक, ये सब सीढ़ियां जो है आपस में कनेक्टेड है। ये ट्रेन के कंपार्टमेंट्स की तरह नहीं है, अलग अलग कोचेस नहीं है। ये कहने का मतलब है, अगर साधु संग कर रहे हैं, श्रद्धा अगर है आदो श्रद्धा, तो साधु संघ का फिर आभास होता है। श्रद्धा जब परिपक्व होने लगती है तो साधु संघ का फिर क्या होता है, आभास, यानी कि साधु संघ करने का विचार जागृत होने लग जाता है। तो ये सब आपस में संबंधित है। और साधु संघ जितना अधिक हम करते जाते हैं तो साधु संघ में रहते रहते भजन क्रिया का फिर आभास होने लगता है। तो इस तरह से हम एक स्तर से दूसरे स्तर में जो है फिर प्रवेश करते हैं। तो इन बातों का बड़ा हमें ध्यान रखना है कि आसक्ति अगर हमें बढ़ानी है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत की तरफ अगर हमें बढ़ना है, तो फिर हमें भगवत भक्तों का संग करना पड़ेगा। भगवत भक्त यानी कि भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करना होगा। जिनकी आसक्ति है कृष्ण से, उनका अगर संग कर लिया जाए तो क्या होगा, हमारी भी आसक्ति होगी। जैसे कि बताया है भागवत में, महत् सेवाम द्वारम आहुर विमुक्तेस तमो द्वारम योषिताम संगी संगम। यानी कि उस व्यक्ति का अगर आप संग करते हैं जो स्त्री से आसक्त है, या उस व्यक्ति का संग किया जाता है किसी अन्य पुरुष से आसक्त है कोई स्त्री, तो क्या होता है, आपकी भी आसक्ति हो जाएगी। योषिताम संगी संगम। और यहां बता रहे हैं भगवान कपिल देव बता रहे हैं भागवत के तृतीय स्कंध में 25वें अध्याय के 20वें श्लोक में, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावर्तम। यानी कि प्रत्येक विद्वान व्यक्ति जानता है कि आसक्ति जो है भौतिक संसार के लिए वो आत्मा के लिए भगबंधन का कारण है। वही आसक्ति अगर हम शुद्ध भक्तों की सेवा में लगा देते हैं जो कि वास्तव में आत्म साक्षात्कार कर चुके हैं, भगवत साक्षात्कार कर चुके हैं, तो फिर मुक्ति का द्वार खुल जाता है। तो आसक्ति की दिशा को केवल बदलना है, और ऐसा करने से हम भवबंधन से छुटकारा प्राप्त करते हैं। तो भगवान कपिल देव बता रहे हैं अपने माता देवहूति को कि वास्तव में इन महान भक्तों का गुण है कि वो हर प्रकार के आसक्ति से दूर होते हैं। सर्वसंग विवर्जिता तत् एते साध्वा साध्वी संगस्तेषु अतहते प्रार्थया संग दोष हरा हिते। यानी कि अगर आप ऐसे शुद्ध भक्तों का संग करते हैं, ऐसे शुद्ध भक्तों से आसक्ति जागृत कर लेते हैं, तो फिर हम लोग भवबंधन से फिर छुटकारा पाते हैं। इसलिए नरोत्तमदास ठाकुर भी ये कह रहे हैं, श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति, सारी आशाएं पूरी हो जाती, ये प्रसादे पूरे सर्वाश, सभी आशाएं पूरी हो जाती हैं। चरण में रति, इसके दो अर्थ हैं, इस पंक्ति के दो अर्थ, यानी कि गुरु की सेवा करने से रति जागृत होती है, भाव के स्तर पर पहुंचते हैं। और दूसरा इसका अर्थ है कि श्री गुरु के चरण में अगर रति जागृत हो जाए, आसक्ति जागृत हो जाए, उनके प्रति अगर आसक्ति जागृत हो जाए, गुरु के प्रति आसक्ति जागृत हो जाए, तो क्या होगा, सारी आशाएं पूरी हो जाएं, सभी आशाएं पूरी हो जाएं। इसके दो अर्थ हैं श्लोक के, पंक्ति के। तो ये ने तेन प्रकार मन कृष्ण निवेश, किसी ना किसी प्रकार से भगवान की सेवा में हमें लगने का प्रयास करना चाहिए। इस भौतिक जगत में इंद्रियां जो है हमारी बहुत प्रबल है। जब हम देह प्राप्त करते हैं तो इंद्रियां जो है विषय वस्तु के लिए भागती है। आंखें जो है वो रूप देखना चाहते हैं, इन कानों के द्वारा हम शब्द सुनने की इच्छा करते हैं। ये कर्ण का विषय वस्तु है वास्तव में शब्द, ये जीवा का विषय वस्तु है क्या रस, ये त्वचा का विषय वस्तु है क्या स्पर्श, इस नासिका का विषय वस्तु है क्या है, गंध। इसकी तलाश में ये इंद्रियां रहती है हमेशा सदैव। हमारा मन जो है विषय वस्तु के बारे में सोचता रहता है और फिर ये इंद्रियां जो है वो साथ देती है। इस तरह से जो है वो मन जो है इंद्रियों का गुलाम बन जाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते शुभ जायते, है ना। इंद्रियों के द्वारा ध्यान लगाते हैं, किस पे? विषय वस्तु पे ध्यान लगाते हैं और इस तरह से फिर आसक्ति जागृत हो जाती है। आसक्ति जब जागृत होती है तो फिर ये आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सारी फिर बाधाएं आती है। आसक्ति के कारण ही हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और कोई कारण नहीं। एक बार किसी ने पूछा श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से कि आपके मंदिर में कई भक्त हैं, कई साल से भजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इतने साल भजन तो कर लिया लेकिन क्या कारण है कि वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे, ऐसा दिखाई लग रहा है, दिखाई पड़ रहा है, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा इसका कारण ये है कि ऐसे जो भक्त हैं बहुत वर्षों के बाद भी अगर वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, इसका अर्थ कारण है कि उनके मन में कई छुपे हुए बुरी आदतें हैं, सीक्रेट बैड हैबिट्स, बिकॉज दे हैव मेंटेन्ड सीक्रेट बैड हैबिट्स, देयरफॉर दे आर नॉट एबल टू एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। छुपे हुए बुरी आदतें हैं, स्थूल रूप में आसक्तियां होती हैं लेकिन सूक्ष्म रूप में जो आसक्तियां होती हैं वो कौन देख पाएगा? गुरु केवल देख पाते हैं, वैष्णव देख पाते हैं उन स्थूल आसक्ति सूक्ष्म आसक्तियों को कि हमारे हृदय में कितना काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है, उसको देख पाते हैं गुरु, इसलिए इलाज भी वही कर सकते हैं और उन अर्थों को कृष्ण की सेवा में वही लगा सकते हैं। इसे साधु संघ का इतना महत्व बताया गया। तो ये आध्यात्मिक मार्ग में यानी कि भक्ति के मार्ग में बहुत ही बहुत बड़ी बाधा है और इसका कारण बता रहे हैं भगवान, बता रहे हैं भगवद गीता के 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में कि इसका कारण है रजोगुण। इस आसक्ति का कारण क्या है? रजोगुण। लोभा प्रवृत्ति आरंभ कर्माणाम असमह स्प्रिहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतश्वः। यानी कि हे भरतवंशी, जब रजोगुण की प्रधानता हो जाती है तो ये वास्तव में क्या है? ये लक्षण है, आसक्ति का लक्षण है, आसक्ति का लक्षण है। यानी कि फल की आकांक्षा, यानी कि बहुत प्रबल इच्छा उसको प्राप्त करने के लिए और असीमित आकांक्षाएं इच्छाएं आतुर बना रहता है हृदय उस विषय वस्तु को प्राप्त करने के लिए। फिर इस आसक्ति को काटना बड़ा मुश्किल है। भौतिक धरातल पर आसक्तियों को काटना असंभव है, आध्यात्मिक धरातल पर भी संभव तभी है जब वैष्णवों का सहारा लिया जाए, साधु संघ में आया जाए, तभी संभव है इन आसक्तियों से बचना। नहीं तो ये आसक्तियां जो हैं वो हमें दोबारा भौतिक शरीर दिलाने में बड़ी सहायता करती है। यम्यम वापि स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम तम तम एव तिखोन्त्या सदा तद भाव भाविता। अंत काल में जैसा आपका भाव होगा वैसा आपको शरीर मिलेगा। अभी हम एक पढ़ रहे थे एक आर्टिकल जिसमें बताया गया कि इस्कॉन के एक भक्त जो थे वो पिछले जन्म में एक ब्रह्मचारी थे और ये के इन प्रकार अंतिम समय में उनको स्त्री का चिंतन हुआ, इस जन्म में स्त्री का शरीर प्राप्त हुआ है लेकिन जन्म में भी इस्कॉन में भक्त, इस जन्म में भी वो इस्कॉन में भक्त, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो गई पिछले जन्म में, ब्रह्मचारी थे लेकिन चिंतन कर लिया स्त्री का, तो इस कारण से अगला शरीर को स्त्री का मिला लेकिन प्रभुपाद की कृपा से इस्कॉन में मिला। तो कहने का मतलब है कि प्रभुपाद जैसे कहते हैं कि अंत काल में अगर चॉकलेट खाने की भी इच्छा होगी तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, चॉकलेट खाने के लिए वापस आना पड़ेगा। एक बार श्रील प्रभुपाद लंदन की स्ट्रीट्स में जा रहे थे और एक छोटा सा पिल्ला प्रभुपाद जी के पांव के पास आकर घूम रहा था, बार बार पांव में चढ़ने का प्रयास कर रहा था प्रभुपाद जी, तो उनका शिष्य उसको हटा रहा था, तो प्रभुपाद ने कहा कि ये पिछले जन्म में मेरा शिष्य था अपराध के कारण उसको ये शरीर मिला है। तो इस तरह से कई घटनाएं हैं, आसक्ति के कारण जो है हमारा पतन भी हो जाता है देहात्मक बुद्धि के कारण। और जब अपराध बढ़ते हैं तो देहात्मक बुद्धि और बढ़ती है हमारी। तो इसी तरह से घटनाएं कई सारी घटनाएं हैं। एक बार एक श्रील गौर गोविंद महाराज के की एक शिष्या थी, वो उन्होंने शरीर छोड़ा तो महाराज ने बताया कि वो स्वर लोक में गाय बन गई, सुरभि गाय। मैं मिलने गया था उससे स्वर लोक, महाराज बता रहे, मैं मिलने गया था वहां पर, देखने गया था उसको, लेकिन वो मुझे पहचान नहीं पाया क्योंकि गाय से बड़ी आसक्ति थी उसकी, इस कारण से उसको गाय का शरीर मिला। उनकी जो शिष्या थी वो क्या बन गई, गाय बन गई। फिर महाराज कहते कि अगले जन्म में वो भक्त के परिवार में जन्म लेंगे। फिर तो आसक्ति जो है हमें दोबारा इस संसार में लेके आने वाले है। जब व्यक्ति आसक्त होता है परिवार से, बच्चों से, समाज से, जितने रिश्ते हम जोड़ते जाते हैं उतना इस संसार के जाल में फंसते जाते हैं। लेकिन इसको हम तत्काल भी छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हृदय के अंतकरण में जब तक मोह बना रहेगा तो बाहरी रूप से त्याग भी कर देंगे, त्याग भी देंगे तो फिर उसका लाभ इतना मिलेगा नहीं। भक्ति परेशान भाव विरक्ति अन्यत्र स्यात्, है ना, यानी कि भक्ति जब हम करते हैं तो परेशान भाव होता है। रियलाइजेशन, किसका रियलाइजेशन, भगवत साक्षात्कार। भक्ति का जो परिणाम है क्या है, भगवत साक्षात्कार होता है। उससे फिर क्या होती है, विरक्ति आती है। अन्यत्र चेष्ट एक काला प्रपद्य मानस्य तुष्टि पुष्टि शुद्ध पाए अनुघाषण। तुष्टि पुष्टि शुद्ध पाए, तुष्टि का मतलब है जब हम लोग भोजन रखते हैं जीवा में तो तुष्टि होती है और उसके बाद फिर क्या होती है, पुष्टि होती है, पोषण होता है, नरिशमेंट मिलता है। और जब नरिशमेंट होता है तो फिर क्या होता है, भूख मिट जाती है। इसी तरह से जब हम भक्ति करते हैं, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर हमें संतुष्टि होती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है और ऐसे सेटिस्फैक्शन से हमें विरक्ति आती है, विरक्ति आती है। यानी कि विरक्ति का कारण क्या है, आनंद। अगर भक्ति में आनंद नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब विरक्ति भी नहीं है। यानी भक्ति करके हम खुश नहीं है तो इसका मतलब विरक्ति भी नहीं होगी साथ। भक्ति कर रहे हैं तो आनंद मिलना चाहिए, यानी कि सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। बहुत अधिक आनंद नहीं तो कम से कम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। सेटिस्फैक्शन होने का मतलब है कि हम लोग अनासक्त होते जा रहे हैं। कृष्ण भावना से, कृष्ण भावना भावित हैं अगर हम, या कृष्ण भावना आंदोलन से अगर हम खुश हैं, इस आंदोलन से खुश हैं, भक्तों का संग अगर हमें अच्छा लगता है, सेवा करके फिर हमें तृप्ति हो रही है, इसका मतलब क्या, विरक्ति भी हो रही है। वासुदेवा भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जन्यति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहित किम, ज्ञानम च यद अहित किम। यानी कि कहने का मतलब है कि भगवत भक्ति में जब लगते हैं तो ज्ञान और वैराग जो है स्वतः ही उत्पन्न होता है। ज्ञान और वैराग भक्ति का अंग नहीं है, भक्ति का लक्षण है। ज्ञान और वैराग भक्ति का अंग नहीं है, भक्ति का लक्षण है। भक्ति अगर कर रहे हैं तो ज्ञान जागृत होता है। क्या ज्ञान जागृत होता है, कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं नित्य दास हूं कृष्ण का, ये ज्ञान। वैराग, इसलिए भक्ति में दिन प्रतिदिन अगर आगे बढ़ रहे हैं तो फिर विरक्ति कितनी आ रही है इसको परखना अति आवश्यक है। रघुनाथ दास गोस्वामी का प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु से कितना अधिक था, इसलिए वो सप्तग्राम को छोड़कर जगन्नाथपुरी की ओर भागे। 18 दिन का सफर उन्होंने 12 दिन में पूरा किया, ये आसक्ति के कारण है। चैतन्य महाप्रभु से प्रेम के कारण, प्रेमाविष्ट हो गए थे चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में, मग्न थे रघुनाथ दास गोस्वामी, इसलिए इतना लंबा सफर जो है बड़ी आसानी से उन्होंने तय कर लिया। देह की सुध-बुध नहीं थी, 18 दिन में यानी 12 दिन में उन्होंने केवल तीन दिन ही उन्होंने कुछ लिया खाने को, 12 दिन में तीन बार ही खाया, तीन दिन खाया। कहने का मतलब है जब भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो शरीर की आवश्यकताएं अपने आप कम होने लगती है और इसका मतलब है और अधिक समय मिलता है हमें भक्ति करने का। आज कारण क्या है कि हम अधिक जप नहीं कर पाते हैं, अधिक अध्ययन नहीं कर पाते हैं, या श्रवण नहीं कर पाते हैं और अधिक साधु संग नहीं कर पाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि देहात्मक बुद्धि के कारण, आसक्ति के कारण। जितना देहात्मक बुद्धि कम होगी उतना अधिक समय मिलेगा श्रवण कीर्तन के लिए। कई बार भक्त लोग कंप्लेन करते नहीं कि हमें पढ़ने का समय नहीं मिलता है, जब हमारा सुबह नहीं पूरा होता, तो ये क्या कारण है इसका? कारण क्या है? कारण सिर्फ इसका यही है, देहात्मक बुद्धि के कारण। जितना अधिक हम देहात्मक बुद्धि में होंगे उतना कम समय मिलेगा जप के लिए, उतना कम समय मिलेगा अध्ययन के लिए, श्रवण के लिए, उतना कम समय हम बिताएंगे भक्तों के बीच में, उतना कम समय हम बिताएंगे भगवान का दर्शन करने में, जैसे राधिका रमण का दर्शन आप कर रहे हैं। तो कई लोग तो आते पुशअप करके चले आते हैं, पुशअप्स करते ना जैसे उठक बैठक, तो दंडवत लगाया उठे फिर एकदम से आगे निकल गए। दर्शन वास्तव में हम लोग जब करने आते हैं तो कम से कम अगर हमें इतना तो सोचना चाहिए कि हम दर्शन करने आ रहे हैं या अटेंडेंस लगाने आ रहे हैं, यानी कि हम अपने आप को राधिका रमण के सामने खड़ा कर रहे हैं, कृष्ण बलराम के सामने खड़ा कर रहे हैं, तो कम से कम इतना तो उनको मौका दें कि वो हमें अच्छी तरह से देख लें, हम उनको देखें ना देखें। इसलिए जितना अधिक होगा निर्मल मन उतना अधिक आप भगवान का दर्शन करना चाहेंगे, उतना ही वैष्णव के सामने बैठना चाहेंगे। इसलिए हर वक्त भक्त जो है वो गुरु के पास क्यों नहीं जाता, वैष्णव के पास क्यों नहीं जाता? क्योंकि भयभीत होता है। बद्ध जीव जो है वो भयभीत होता है और गुरु जो है वो आसक्ति को काटने वाले हैं, इसलिए गुरु के सामने जाने में, वैष्णव के सामने जाने में डर क्यों लगता है? देहात्मक बुद्धि के कारण। देहात्मक बुद्धि भय उत्पन्न करता है और इस कारण से क्या भय है कि गुरु हमें कहीं ये सेवा न दे दे, कहीं गुरु हमें ये ना कह दे कि आप वहां चले जाओ जहां कोई नहीं जाना चाहता। तो इसलिए साधु संग से भय लगता है, क्योंकि साधु क्या करते हैं, वो तो काटेंगे अज्ञानता को, ऑपरेशन भी कर सकते हैं, कड़वी दवाई भी दे सकते हैं। इसलिए एक जगह बताया भी गया है, हमें याद नहीं इसका सोर्स क्या है, लेकिन हमने पढ़ा था और सुनने में बड़ा ठीक लगता है कि अगर हम वैष्णव बनना चाहते हैं तो वैष्णवों की डांट खाने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए वैष्णव की डांट खाना इतना आसान नहीं। प्रभुपाद जब अपने शिष्यों को डांटते थे तो वहीं पर वो कांपने लगते थे, लेकिन उनका समर्पण ये था क्योंकि उनका प्रेम था प्रभुपाद जैसे, इसलिए प्रभुपाद डांटते भी थे तो उसको सहन कर लेते थे और इस कारण से वो लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ गए। इस कारण से वो भक्ति में आगे बढ़ गए क्योंकि उस बीमारी के लिए कड़वी दवाई अगर गुरु देते हैं, वैष्णव देते हैं, उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं उस दवाई को, तो फिर वो जो है हमारे लिए फिर टॉनिक का कार्य करती है, रसायन का कार्य करती है। इसलिए इतना आसान नहीं है गुरु के समक्ष खड़ा होना, इसलिए इतना आसान नहीं है वैष्णव के पास जाना, भयभीत रहते हैं हम, भय रहता है। तो ये सब कारण है, आसक्ति के कारण होता है कि कई बार आसक्ति के कारण हम वरिष्ठ भक्तों का संग नहीं करते हैं। वरिष्ठ भक्त मतलब जो भक्ति में गंभीर है, भक्ति मार्ग में गंभीर है, समर्पित है। समर्पित भक्तों का संग हम बहुत कम करना चाहेंगे। हमें अपने आप को परखना है कि हम किसका संग करते हैं। मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो अगर हम गंभीर भक्तों का संग कर रहे हैं इसका मतलब यह है कि हम भी गंभीर बनना चाहते हैं, लेकिन अगर हम उन भक्तों का संग करना चाहते हैं जो गंभीर नहीं है इसका मतलब अभी हम गंभीर नहीं है। आसक्ति के कारण, आसक्ति के कारण जो है हम डरते हैं ऐसे भक्तों का संग करने के लिए। ऐसे भक्त जो है वो भालो ना खाए वे, भालो ना पैरे वे, ग्राम में कथा ना सुनी वे, ग्राम में वार्ता ना कही वे, ये सब लक्षण उनमें पाए जाते हैं। उनके साथ रहने का मतलब है ये सब आपको भी करना पड़ेगा। एक बार एक भक्त जो है अपने गुरु महाराज के साथ जगन्नाथपुरी गया पुरुषोत्तम मास, और पुरुषोत्तम मास में पूरे एक महीने एक टाइम उसको खिचड़ी खाना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप तुम आ ही गए हो जगन्नाथपुरी पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम व्रत रखने के लिए, तो मैं तो एक ही समय खिचड़ी प्रसाद लूंगा, तुम भी ऐसे करो। तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल था, जगन्नाथ जी का प्रसाद, उसने सोचा कि जगन्नाथ पुरी जाके मिलेगा, लेकिन वहां जाके मिला उसको खिचड़ी प्रसाद। तो एक महीने के लिए जब खिचड़ी प्रसाद लिया, जब वापस आया, वो हमारे पास जब आया तो वो बहुत परेशान था। हमने कहा क्या हो गया? तो महाराज के साथ में एक महीने रहा, तो क्या बात है? तो फिर आप परेशान क्यों लग रहे हो? गुरु का संग करके आए हो, प्रभु जी ऐसे थोड़ा होता है। महाराज तो इतने साल से सेवा कर रहे हैं, 30 साल से, मैं तो अभी नया भक्त हूं, मैं कैसे एक टाइम खिचड़ी खा के रह सकता हूं? मैं तो अब यहां पे एक हफ्ते रह के जाऊंगा दिल्ली मंदिर में, राजभोग महाप्रसाद लेके फिर जाऊंगा आगे वृंदावन। तो पूरा एक महीना, एक हफ्ता जो उसने बिताया मंदिर में, दिल्ली मंदिर में खूब राजभोग महाप्रसाद लिया, फिर से अपने आप को हेल्दी बनाया, फिर वो वृंदावन गया। विषया छड़िए शुद्ध कवे हुए मन, कवे हामा भुजोबो से श्री वृंदावन। नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए कह रहे हैं कि कब मेरा मन जो है विषय विकारों से अनासक्त होगा और तब मैं वृंदावन धाम में प्रवेश कर पाऊंगा। नाम भजन के द्वारा अपने मन को पवित्र करना है, वैष्णव की सेवा के द्वारा अपने मन को पवित्र करना, अनासक्त होना है और ऐसी भावना से वृंदावन में प्रवेश करना है। तो ये इस कारण से हम लोग जो है साधु संग नहीं कर पाते हैं। मंदिर में भी कई बार सन्यासी आते हैं या प्रभुपाद जी के शिष्य आते हैं या वरिष्ठ वैष्णव गण आते हैं जो काफी भक्ति में आगे बढ़े हैं, लेकिन हम बहुत कम समय बिता पाते। अगर बहुत सारी सेवाएं हैं, जिम्मेदारी है, वो अलग बात है, लेकिन सेवा ना होने पर भी हम उनका संग कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? यही तो है बीमारी। इसको कहते हैं विश्वनाथ जी ठाकुर, विषय क्या है? विषय संग्रह। विषय संग्रह का अर्थ है, या अनर्थ का अर्थ है कि कभी कभी तो भजन तो कर रहे हैं लेकिन फिर से विषयों में आसक्त हो जाते हैं। जब कर रहे हैं, पास में मिठाई रखी हुई है, लड्डू का डब्बा रखा हुआ है, माला कर ली, बीच में थोड़े थोड़े लड्डू डाले मुंह में, है ना, नाम में रुचि तो नहीं आ रही, चलो लड्डू डालेंगे तो शायद रुचि आ जाए। हाँ, अब नाम में रुचि है, कितना मधुर मधुर नाम है हरि नाम। तो इस तरह से हरि नाम को हम लोग मीठा बनाते हैं। इस अनर्थ को विश्वनाथ चक्र ठाकुर ने कहा कषाय। कषाय का मतलब है हरि नाम लेते हुए, श्रवण करते हुए बीच बीच में कुछ ना कुछ खाना, या सोने का मन करना थोड़ा लेट जाए, या जब करते करते लेट के जब कर लेंगे। तो ये सब अनर्थ है आसक्ति के कारण, है ना। इसी को अविद्या कहते हैं, अविद्या, है ना, अविद्या देहात्मक बुद्धि। इसलिए शुद्ध भक्ति हम नहीं कर सकते जब तक ये क्लेश होंगे हमारे में। क्लेशाग्नि श्री रूप गोस्वामी ने बताया है शुद्ध भक्ति का पहला लक्षण, जिसमें दो बताया उन्होंने, अविद्या और पाप। अविद्या का मतलब देहात्मक बुद्धि, पाप का मतलब अलग अलग तरह के पाप हम जो करते हैं, पाप के जो रिएक्शंस मिलते हैं। तो जब तक हम देहात्मक बुद्धि से इन पाप कार्यों से छुटकारा नहीं पा लेते हैं तो भजन में दृढ़ता नहीं आती है। ये शांत तो अंतगतम पापाम जनानाम पुण्य कर्मणा स्वद्वंद मोह निर्मुक्ता भजनते वाम दृढ़ता। विद डिटर्मिनेशन भजन क्यों नहीं हो पाता है? द्वंद के कारण। तो जब तक ये द्वंद बना रहेगा संसार में, सुख और दुख का, हानि और लाभ का, तब तक भक्ति करवाना बड़ा मुश्किल है। जैसे बील मंगल ठाकुर की कथा में आता है कि बील मंगल ठाकुर उस वैश्या से आसक्त थे बहुत, चिंतामणि से, नदी पार करके गए और ये भी नहीं देखा कि वो व्यक्ति जिंदा है मरा हुआ है। मृतक शरीर के सहारे जो है वो नदी पार किया उन्होंने। आंधी तूफान बारिश में वो वैश्या के घर पहुंचे, दीवार फांद के। वैश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी आसक्ति, इतना मोह, अगर इतना समय, इतना अगर चिंतन आपने कृष्ण का किया होता, वृंदावन जाने में बिताया होता इतना समय, तो अब तक तो आपको कृष्ण मिल गए होते। इस मल मूत्र वाले शरीर से आप आसक्त हो रहे हैं। तो बील मंगल ठाकुर की चेतना जागी, बील मंगल ठाकुर वृंदावन की ओर बढ़े, वृंदावन के और गए तो वहां पर फिर से एक रात जब रुके, रात एक गांव में रुके रात्रि के समय, तो उन्होंने देखा कि बारिश का समय था वैसे ही, तो एक औरत जो है वो पानी भर के लेके आ रही थी कुएं से बरसात के मौसम, और उस स्त्री को देखकर बिलमंगल ठाकुर का मन फिर से विचलित हुआ। ये उस समय उपाधि नहीं थी उनकी, ठाकुर बिलमंगल ठाकुर करके, वृंदावन जाने से पहले की घटना है। तो फिर वो पीछे पीछे गए तो ब्राह्मणी ने बताया अपने पति को ये कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो देखा ब्राह्मण है, ब्राह्मण का हमें स्वागत करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ब्राह्मण ने से पूछा, यानी कि इनसे पूछा कि आप कि कैसे हम सेवा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके पत्नी से मिलना चाहता हूं। ठीक है, तो ब्राह्मणी से उन्होंने पूछा कि मुझे आप अपना हेयर पिन दे दीजिए। लीजिए हेयर पिन से अपने आंख फोड़ डाले कि आंखों के द्वारा जो है मैंने फिर से जो है ये दुष्ट कार्य किया, फिर से मैं पाप के कार्य में लग गया, ऐसे आंखों का क्या लाभ। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हम भी आपने आंखें खोल ले सब सूरदास बन जाए, नकली सूरदास। ये अनुभूति होना आवश्यक है। तो कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार बिलमंग ठाकुर जब फिर जब वृंदावन पहुंचे तो वास्तव में भगवत प्रेम प्राप्त किया उन्होंने बिलमंग ठाकुर। तो कहने का मतलब है कि इसी को विषय संग्रह कहते हैं। विषय संग्रह का मतलब यह है कि सब कुछ छोड़ के आ गए थे, अब लगा था कि हम भक्ति हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन कुछ वर्षों के बाद हम फिर देखते हैं कि फिर से हम लोग विषय वस्तु में फंस गए, फिर से हमारा मन जो है बाहर की दुनिया में जा रहा है। पुनः पुनः चरवित चुरनाम बांटासी जिसको कहते हैं, जैसे कुत्ता जो है अपनी उल्टी खाता है। जो छोड़ दिया है, जो त्याग दिया है, कोई पीछे मुड़कर देखता है क्या? मल मूत्र को कोई देखता है त्यागने के बाद? लेकिन कई बार फिर हम देखते हैं फिर संसार में कि वो जमाना कैसा था। तो तमाम आसक्तियों को त्यागना होगा भगवान के धाम जाने के लिए, समस्त प्रकार की आसक्तियों को त्यागना पड़ेगा। रंच मात्र भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए संसार से, तब हम लोग जा पाएंगे भगवान के धाम में, तभी संभव है। और जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य गए हैं वो इसी कारणवश गए हैं क्योंकि प्रभुपाद जी से उनका प्रेम था, उनसे आसक्ति थी, इसलिए प्रभुपाद उनको ले गए। तो इसलिए हमें बड़ा सावधान रहना होगा कि जब हम भक्ति के मार्ग में हैं तो आसक्तियों से बचे। जिस तरह से परीक्षित महाराज संपूर्ण साम्राज्य त्याग कर वो सुखदेव गोस्वामी के पास आ गए थे साधु संग करने के लिए, है ना। यानी कि जितना अधिक हम लोग संग्रह करेंगे धन, जितना हम लोग लाभ पूजा प्रतिष्ठा संग्रह करेंगे, जितना परिवार बढ़ाते जाएंगे, जितना समाज में अपना स्थान बनाते जाएंगे, उतना ही निकलना बाहर मुश्किल हो जाता है। ये सब मद है, जन्म ऐश्वर्य सुतर श्री वीर, इससे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसके निकलने का यहां पर उपाय बता रहे हैं इस श्लोक में कि भक्ति एक साधन है, केवल भक्ति के द्वारा। कर्माणि निर्दहति किंतु जब भक्ति भाजाम, भक्ति के द्वारा ही केवल संभव है, अन्यथा यह संभव ही नहीं है। लेकिन कोई सोचे कि फल्गु वैराग इसको कहते हैं या मरकट वैराग, जिस तरह सौबरी मणि जो है यमुना जी के भीतर चले गए, वहां हजारों साल के लिए तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगा रहे थे, लेकिन गरुड़ जी के प्रति उन्होंने अपराध कर दिया, गरुड़ जी को आने नहीं दिया, गरुड़ जी का भोजन मछली है, गरुड़ जी को भगा दिया उन्होंने मछलियों की रक्षा करने के लिए। मनुष्य समाज से आसक्ति नहीं रही लेकिन मछली समाज से आसक्ति हो गई। कहने का अर्थ यह है कि आसक्ति का मतलब यह नहीं कि केवल मनुष्य से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि किसी वस्तु से भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे भरत महाराज, भरत महाराज संपूर्ण साम्राज्य त्याग दिया, बोलते हैं कि भाव की अवस्था में भी आ गए। भाव की दशा में सामान्यतः ऐसा होता नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि भौतिक शरीर के भीतर है तो ये थोड़ा खतरा सा भरा रहता है। तो इस वजह से भरत महाराज के प्रसंग से शिक्षा मिल सकती है कि भरत महाराज कैसे उस बच्चे से, हिरण के बच्चे से आसक्त हो गए, उसका चिंतन करने लगे, फिर उसकी सेवा में लगे भजन को छोड़कर। तो कहने का मतलब है कि फिर जब इतना संग किया, इतना जब मोह हो गया, तो अंत में फिर क्या हुआ, हिरण का चिंतन हुआ। लेकिन परीक्षित महाराज क्योंकि वो पूर्ण रूपे जो है उनका मन जो है भगवान के चरणों में लग चुका था, इसलिए तक्षक सर्प भी आया डसने के लिए, परीक्षित महाराज जो है फिर भी विचलित नहीं हुए क्योंकि उनका मन जो है भगवान के प्रेम में, भगवत प्रेम में लग चुका था। तो तो इसलिए सौबरी मुनि का देखिए, इसलिए मैंने बताया कि सौबरी मुनि ने जब अपराध किया तो फिर क्या हुआ, उनके हृदय में वासना जागृत हुई, वो यमुन जल से बाहर आ गए, मथुरा गए और राजा मंदाता की 50 बेटियों से विवाह किया सौबरी मुनि ने। तो आसक्ति का कोई अंत नहीं है। इसी तरह से भागवत में कई प्रसंग देते हैं, जैसे ये याति महाराज लगभग 1000 साल उन्होंने इंद्र तृप्ति में लगाया फिर भी संतुष्टि नहीं मिली। इसलिए कोई सोचे कि हम इंद्र तृप्ति करते रहेंगे फिर जो है अपने आप जो है निवृत्त हो जाएंगे, फिर हम भक्ति में लगेंगे, ये सिद्धांत भागवत का नहीं। भागवत का सिद्धांत है निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति मार्ग। श्रीमद् भागवत में निवृत्ति मार्ग बताया गया है। निवृत्ति का मार्ग का मतलब यह है कि आसक्ति हो या ना हो भक्ति शुरू कर दो, निवृत्ति मार्ग का अर्थ यह है। आसक्ति हो या नहीं हो भक्ति प्रारंभ कर दी जाए। काम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार दी तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। भक्ति में यह किन प्रकार लग जाना चाहिए और अनर्थों की चिंता नहीं करनी चाहिए। अनर्थ तो है, कोई शंक नहीं है इसमें, अनर्थ है करके अनर्थ तो है, लेकिन अगर हम अपना मन अपने इंद्रियों को सेवा में लगाए रखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप ही अनर्थ कटते जाएंगे, अनर्थ दूर होते जाएंगे। तो इसलिए इन सब का हमें ध्यान रखना है, आसक्ति से बचना है, भौतिक संसार की आसक्ति से बचना है। श्रील रूप गोस्वामी ने इसलिए बड़ा अच्छा बताया है, अनासक्तस्य विषयान यथारम उपयुंजिता निर्बंध कृष्ट संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। युक्त वैराग्य, युक्त वैराग्य प्रशिक्षण हमें लेना पड़ेगा और प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी ने मना किया, अत्याहार अत्याहार अति संग्रह करना, प्रयासश्च बहुत अधिक प्रयास करना भौतिक संसार में रहते हुए, इससे ठीक से भजन नहीं हो पाता, इससे सेवा नहीं हो पाती है। इसलिए आइए, हम सबको मौका मिला है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ में भक्ति में आगे बढ़ने का, बहुत सारा मौका मिला है। 24 घंटे आप भगवान की सेवा कर सकते हैं, इतनी सारी सेवाएं हैं, इसलिए सेवा को बढ़ाइए घटाइए मत, यही एक तरीका है माया से बचने का। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति। तो इसलिए अभी दिसंबर का महीना आ रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन का समय आ रहा है, तो अभी से ही जो है तैयारी शुरू कर दें हम लोग, अभी से इसके लिए फाउंडेशन बनाना शुरू करते हैं। दिन रात चिंतन करें, श्रवण कीर्तन करें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो स्मरण होगा, है ना। स्मरण रात्रि को सोते वक्त भी सपने देखेंगे हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के, और फिर इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, कोटेशन भेजें एक दूसरे को, सुबह उठते ही पहला कोट मिले बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, है ना। और जहां पर बाथरूम में शेविंग करने जाते हैं या नहाने जाते हैं वहां शीशे के साथ भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के कोट्स लगाएं, प्रसादम हॉल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन के कोट्स लगाएं, बुक शॉप के बाहर भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन के कोट्स लगाएं, मंदिर के कोने कोने में जहां जहां लगाया जा सकता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के कोट्स हों श्रील प्रभुपाद जी के, और हर भक्त के वस्त्र में भी, वस्त्रों में भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कोर्स, अगर टी शर्ट पहन तो, इफ यू वॉन्ट टू प्लीज मी देन डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, कोई भी बोल सकता है ना। प्रभुपाद ने बोला एक्चुअली ये, लेकिन अगर भक्ति बोल रहा है तो उसमें क्या, उसमें कोई गलत बात नहीं है, उसका तो अपना कोई किताब है नहीं, प्रभुपाद जी की बुक्स ही है, तो अगर वो बोल भी रहा है तो भक्त जान जाएंगे कि ये अपने लिए नहीं कह रहा है, अगर उसके लिए भी है तो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैसेज पास ऑन करना शुरू कर दें, ट्रांसमिट करें, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया, इसी तरह से सबको दिव्य ज्ञान दिया जाए बुक डिस्ट्रीब्यूशन का। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, तो संकीर्तन जब करेंगे तो फिर विरक्ति अपने आप आएगी। वृद्ध हो, युवा हो, बालक हो, माता हो, बच्चे हो, कोई भी हो, किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी देश के हो, किसी भी राज्य के हो, किसी भी प्रांत के हो, हम सबको मिलकर जो है प्रभुपाद जी के ग्रंथों को बांटना है। हर जगह से, ऑल्टर से, किचन से, बुक शॉप से, कमरे से, वॉशरूम से, बाथरूम से, हर जगह से बुक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। गाड़ियों से, स्टॉप लाइट में, दुकानों में, बिजनेस हाउसेस में, अपने ऑफिस में हर जगह प्रभुपाद की बुक्स रखिए, कॉन्शियस हो जाइए बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में 24 घंटे दिन रात। फिर जब पहला दिसंबर आएगा, 1 दिसंबर आएगा, तो सब पहले से तैयार होंगे, फिर बॉम्ब डालना शुरू कर दी। ये है असली बॉम्ब हमारा, इससे बड़ा बॉम्ब कोई है नहीं। प्रभुपाद ने कहा दीज बुक्स आर लाइक टाइम बॉम्ब, एनी टाइम इट कैन एक्सप्लोड। इसे प्रभुपाद जी के ग्रंथों को रखवाई। पिछले साल बंबई में एक असली घटना हुई, 2 ब्रह्मचारी भक्त गए एक अपार्टमेंट में बुक्स लेके, तो घंटी जब बजाई तो एक माता श्री ने दरवाजा खोला, रो रही थी वो। फिर भक्तों ने भगवद गीता दी उनको, उन्हें भगवद गीता पलटी, पेजेस देखे और रोने लगे हो। फिर उन्होंने कहा कि आपने तो मुझे बचा लिया, आप जानते मैं क्या करने वाली थी। तो क्या, आओ अंदर आओ। तो अंदर जाके देखा वो फांसी लगा रहे थे अपने आप, सुसाइड करने वाली थी वो, उसने पंखे में रस्सी लटकाया हुआ था जैसे दिखाते ना मूवीज में, और नीचे चेयर, उसमें खड़े होकर वो हरी बोल होने वाले थे। तैन मौके में घंटी बज गई आपकी, और देखिए घंटी बजी, सामने क्या देखती हूं मैं कि इस्कॉन से भक्त आया, आप लोगों ने बचा लिया मुझे, मेरा जीवन बचा लिया। तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन से देखिए कितने लोगों का जीवन बच जाता, और वो भक्त बन गए। फिर और फिर वो जू मंदिर में आते हैं, उन्होंने जब भी शुरू कर दिया, कहा वो आत्महत्या करके भूत बनने वाले थे। नहीं तो इस्कॉन के भक्त जो है भूत को भी भक्त बना देते हैं, भूत को भी भक्त बना देते हैं इस्कॉन के भक्त। और आज के समय में कली काल में तो प्रत्येक व्यक्ति जो है भूत का ही कार्य कर रहा है, सब भूत है, क्योंकि माया के द्वारा वशीभूत है इसलिए सब भूत है, हॉन्टेड बाय घोस्ट। तो इसलिए हमें भी हॉन्टेड रहना है, लेकिन माया के द्वारा नहीं, कृष्णा कॉन्शियसनेस के द्वारा, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शन के द्वारा वी शुड बी हॉन्टेड। प्रभुपाद जी के बारे में उनके गुरु भाई थे, प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे एक श्रीधर मार, भक्ति रक्षक श्रीधर मार, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को नित्यानंद प्रभु का आवेश अवतार बताया, शाक्तिवेश अवतार। उन्होंने बताया कि श्री प्रभुपाद जी के बारे में कि ही वॉज हॉन्टेड, श्रील प्रभुपाद योर गुरु महाराज वॉज हॉन्टेड बाय द इंस्ट्रक्शंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, ही वॉज हॉन्टेड, है ना, इस कारण से आवेश था। तो 24 घंटे उनके मतलब कर्ण द्वार में या चेतना में उनके गुरु महाराज की आज्ञा जो है चलती रहती थी, ही वॉज हॉन्टेड। और हॉन्ट के कारण जो है वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी कहां से कहां पहुंच गए, आवेश के कारण, सख्त आवेश, है ना, चेतने महाप्रभु का आवेश। इसे चेतन चरितामृत में लिखा है कि जब तक शक्ति ना हो जाए, शक्ति संचारित ना हो जाए, महाप्रभु का, महाप्रभु की कृपा ना हो जाए, हम इस नाम संकीर्तन का, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार नहीं कर सकते हैं। तो आवेश प्रभुपाद जी के पास वो आवेश था। तो ये आवेश आपको भी प्राप्त हो सकता है अगर हम जुड़ जाए तो। प्रभुपाद जी से जुड़िए, केवल कनेक्ट हो जाइए और ग्रंथ को हाथ में लीजिए, देखिए कैसे करण दौड़ता है आपके शरीर में। रोमांच कंपा श्रुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणार विंदम, है ना, तो कंपन होने लगेगा शरीर में, एक्सटेसी में रहेंगे, फिर अश्रु धारा बहेगी, कंठ गदगद हो जाएगा ग्रंथ लेते ही। तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हमेशा अपने साथ रखिए, कहीं भी जाए 8-10 किताबें साथ में रखिए। जैसे क्रिश्चियंस क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं ना वो बाइबल रखते हैं एक हमेशा अपने साथ, तो इसी तरह से साथ में हमें कुछ भगवद गीता रखनी चाहिए, प्रभुपाद की बुक्स रखनी चाहिए। तो कहीं भी जाए, कहीं भी मौका मिले एकदम किताब निकाला दे दिए, है ना। तो इस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारा भी बढ़ेगा और प्रचार भी बढ़ेगा। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्ण।
आपने बहुत अच्छा गुरु का गुणगान किया, प्रभुपाद जी की प्रशंसा की और इस कौन को बहुत महिमा दी। तो प्रभु जी जिस प्रकार गर्मी में राहत एसी से मिलती है, वैसे ही संसार की दावनल को राहत एसी भक्ति विदात से मिलती है।
हरे वाह, और कोई प्रश्न, कोई समीक्षा? रुक्मिणी किसको कोई बोलिए।
जैसे हम लोग फेमस ड्रामास करते थे, अ डे इन द लाइफ ऑफ, एक दिन उसके प्राइम मिनिस्टर के दिन में कैसे उसकी दिनचर्या होती है, एक मैराथन का महीना प्रभुपाद की कृपा से ऐसा है कि वी शुड स्पेंड अ मंथ इन द लाइफ ऑफ ए सन्यासी।
बिल्कुल,
पूरा हम चाहे किसी भी आश्रम में हो, हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो सन्यासी हैं वो कैसे, उनको क्या अनुभव होते हैं। जैसे हमने बताया रोमांच कंपा शो तरंगवा, जो तो हम किसी भी आश्रम में रहते हुए समाधि की अवस्था में रह सकते हैं अगर हम 24 घंटे पूर्ण शिक्षण के बाद।
बुक डिस्ट्रीब्यूटर जो होते हैं, जब वो वास्तव में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या लगे रहते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन, एक्चुअली दे आर इन समाधि, कोई डाउट ही नहीं है उसमें, 100% समाधि में, दे आर एक्चुअली ऑन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। प्रभुपाद से किसी ने पूछा था ये प्रश्न कन्वर्सेशन में कि भक्त लोग जब बाहर जाते हैं प्रभुपाद तो ऐसा तो नहीं है जब संकीर्तन करते हैं तो माया का प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर? प्रभुपाद ने कहा इम्पॉसिबल, प्रभुपाद कहते हैं जब भक्त लोग संकीर्तन कर रहे होते हैं तो एक्चुअली दे आर ऑन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म, माया कैन नॉट टच देम। तो इसलिए आप सबको स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में आना है, अगर इंस्टेंट स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट स्वरूप इज अवेलेबल इन द मंथ ऑफ दिसंबर, आप में से कितने लोग तैयार हैं बताइए, कहते हैं इंस्टेंट स्वरूप, तो इंस्टेंट स्वरूप को चाहता है तो दैट इज अवेलेबल इन द मंथ ऑफ दिसंबर, तैयार रहिए इसके लिए। तो कोई भी हो, गृहस्थ हो, सही बोल रहे हैं, वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, शूद्र हो, सॉरी वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, भक्त हो, लेकिन तो ग्रंथ बांट सकते हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ जो है भक्ति बांट सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। मार्केटिंग सेल्समैन नहीं, प्रोफेशनल सेल्समैन नहीं बांट सकते प्रभुपाद की बुक्स, प्रभुपाद जी की बुक्स केवल प्रभुपाद जी के जो फॉलोअर्स हैं वो ही डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके पास ही शक्ति है, ये पावर प्रभुपाद ने अपने फॉलोअर्स को दिया है, तो ये कृपा पात्र बने हैं उसके, स्वीकार कर लें इस कृपा को, कृपा पात्र में छिद्र नहीं होने चाहिए, होल्ड करिए उस कृपा को, बहुत लाभ मिलेगा हम सब।
हरे कृष्ण, बुद्धिशन के बारे में बताया, कई बार जैसे बुद्धिशन करते हुए डिवोटी बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, उससे लोग कहता ले तो लेते हैं बट इट गेट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन अबाउट इस्कॉन, कई लोगों को लगता है सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं इस प्रकार से, तो ऐसे में तो क्या लाइन रहनी चाहिए डिवोटी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि वो इतना ना कर दें कि मतलब बाय हुक और बाय क्रूक उसको किताब देनी है, मतलब कुछ स्ट्रैंगलिंग हो जाता है बहुत ज्यादा,
इतना फोर्स ना करें कि वो शरीर छोड़ना पड़े उसको, या आपको छोड़ना पड़े या इस्कॉन को छोड़ना पड़े या दोबारा कभी इस्कॉन में ना आए, हमें कन्विंस करना है, फोर्स नहीं करना है। फिर भी बताया कहावत है अंग्रेजी, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज स्टिल ऑफ द सेम ओपिनियन, अ मैन कन्विंस्ड अगेंस्ट हिज विल इज स्टिल ऑफ द सेम ओपिनियन स्टिल, हाँ तो उसका वही मत बना रहेगा, बाहर से बोलेगा ठीक है अंदर से तो ना चल रहा उसे। लेकिन देखिए फिर भी देखिए भक्त कृपा करना चाहते हैं, आप मान लीजिए व्यक्ति बीमार है, एग्जाम्पल डॉक्टर के पास जाते हो आप और डॉक्टर बोलता है जी आपको तो इंजेक्शन देना ही पड़ेगा मुझे, या कहते डॉक्टर कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा, आप बोलते मैं नहीं करवाऊंगा, नहीं आपको करवाना पड़ेगा, तो उस समय डॉक्टर हमारा मित्र है या दुश्मन? तो ये इसी तरह से अगर भक्त एक आध बार थोड़ा फोर्स भी कर लेते हैं तो डॉक्टर का ही कार्य कर रहे हैं, उस व्यक्ति को ऑपरेट कर रहे हैं, दिस इज स्पिरिचुअल सर्जरी, ही मस्ट बी रेडी टू एक्सेप्ट, दोनों का कल्याण होगा, सही कह रहे हैं आप। सही बात,
मैं एडवांस डिवोटी का संग करना चाहिए तो वापो स्टेशन जरूरी है डिबोटी एडवांस डिबोटी का या वाणी संघ से भी कम चल जाएगा?
दोनों जरूरी है। आप से तैयार हैं मैराथन के लिए नित्य धाम प्रभु, यू आर द लीडर, आप है लीडर, संकीर्तन लीडर पंजाबी बाग में कौन है? नित्य धाम प्रभु, तो आप सेना तैयार रखिए अपनी। और सो व्हाट इज योर कोटा मंथ ऑफ दिसंबर, टारगेट बताइए, 30,000 बुक्स इन 15 डेज, शक्ति मिली आपको, प्रभुपाद ने शक्ति दी है, गुरु महाराज ने शक्ति दी है, द एंटायर जोन ऑफ गुरु महाराज इज फुल ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है कि नहीं? नॉर्दर्न जोन, वेस्टर्न जोन, रशिया, सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन से भरा हुआ है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद ने क्लियर बोला है कि जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं जीवन के अंतकाल तक जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, लॉर्ड चैतन्य विल पर्सनली डिलीवर देम, ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है, हमारे पास कोट है, लॉर्ड चैतन्य विल पर्सनली डिलीवर देम व्हाट डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स टिल द एंड ऑफ लाइफ, गारंटी 100% वापस चले जाएंगे इसी जन्म में, सीधा रासलीला, डायरेक्ट एंट्री रासलीला में। तो आप सब जाना चाहते हैं रासलीला में? कितने आप में से कितने लोग रासलीला में प्रवेश करना चाहते हैं? हाथ घड़क लिए, कोई इंटरेस्ट नहीं है। देखा, यही इसी को तो कहते हैं आ सकती। इसलिए तो हमने कहा कि हम वास्तव में धाम जाना ही नहीं चाहते। हम बोलते तो हैं बैक होम बैक टू गॉड, लेकिन वास्तव में हम सबको यहाँ पे रहने की इच्छा है इस संसार में। ये शरीर को त्यागना इतना आसान नहीं, आसक्ति को त्यागना। तो आप में से कितने भक्त आ रहे हैं रासलीला में भाग लेने के लिए? थियोरेटिकली सही, तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है संकीर्तन लीला। तो संकीर्तन लीला में अगर हम भाग लेंगे, जो कि हम लोग कर रहे हैं, यानी हम नहीं कर रहे, चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं, हम उसमें भाग ले रहे हैं, तो वी आर श्योर टू गो संकीर्तन लीला, नॉन डिफरेंट फ्रॉम रासलीला। तो आप सब तैयार हो जाइए। यहाँ पे बहुत सारे युवा भक्त नजर आ रहे हैं, तो सब जो युवा भी नहीं है, वैसे भी युवक हैं, तो सब लग सकते हैं इसमें। सब लोग तैयार रहे, हम सब। केशव मुरारी प्रभु, क्या ख्याल है आपका? व्हाट इज योर कोटा टारगेट? कहते सारा कोटा उनका है 1.75। अरे वाह, साधु साधु साधु। तो हम लोग सब चिंतन करें 24 घंटे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे पढ़ा जाए। कोई ऐसा एरिया ना छोड़े, कोई ऐसा स्थान ना छोड़े, सर्वत्र हो वे प्रकाश, है ना। जहां जहां गली गली नुक्कड़ में, बिल्डिंग में, इमारत में, कुएं में, गुफा में, पिलर में, खंबे के अंदर, जहां जहां जा सकते हैं चले जाएं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। प्लीज क्रिएट अ रिकॉर्ड, है ना। दिल्ली वालों को लगे जहां भी जाते हैं इस्कॉन के भक्त नजर आते हैं बुक्स के साथ। अब तो बहुत बुरी हालत है, ये तो टेररिस्ट से भी ज्यादा भयानक लगे। 1.5 करोड़ की आबादी है दिल्ली में। प्रभुपाद कह रहे हैं कि दिस इज चैतन्य महापुरुष मर्सी, वी आर नेवर शॉर्टेज ऑफ कस्टमर्स। थे चैतन्य महापुरुष की दया है विशेष रूप से इधर इस देश में, तो जनसंख्या की कमी नहीं है, हमेशा कस्टमर रहेंगे आपके लिए बुक्स के। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरे हरि।